सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।
अर्पण रेडियो पर प्रस्तुत है डॉक्टरी सलाह पर आधारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी। आज का विषय है सर्प दंश और एनिमल बाइट। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर मधुमिता मूर्ति और डॉक्टर एस चटर्जी। प्रस्तुति है संज्ञा टंडन की।
श्रोताओं, हम लोग सिर्फ इंसानों के बीच नहीं रहते, ऐसे कई जानवर भी हैं जो हमारे घर के दायरे और उससे बाहर आबाद हैं। बहुत से जानवरों को तो हम बाकायदा पालते हैं, लेकिन बिल्कुल आंखों के सामने रहने वाले ये जानवर हमारे लिए खतरा भी साबित हो सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सांप, छिपकली, भालू से लेकर छोटे बड़े कीड़ों के काटने डसने पर अगर हम सही वक्त पर सही इलाज न करवाएं तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इन जानवरों के काटने का क्या इलाज है, इसके बारे में हमें जानकारी देंगे आज विशेषज्ञ डॉक्टर एस चटर्जी और डॉक्टर मधुमिता मूर्ति। इस संदर्भ में आज हमको बहुत सारी जानकारियां देने वाली हैं। स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में।
बरसात में ज़्यादातर सांप बाहर आ जाते हैं, तो रात में सोते वक्त या खेत में लोग गए हैं काम करने के लिए, ग्रामीण लोग, तो उनको सांप कभी जाने में या अनजाने में काट लेता है।
बरसात के मौसम की शुरुआत के साथ अखबारों में नजर आने लगती हैं सर्प दंश से जुड़ी हुई घटनाएं, और वैसे भी सांप का नाम सुनकर हर किसी के मन में एक दहशत आ जाती है। माना जाता है कि सांप के डसने से पीड़ित शख्स की मौत हो जाती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये राय सही नहीं है।
भारत में करीब 2.5 लाख केसेस होते हैं हर वर्ष सांप दंश के आते हैं, और उसमें कम से कम बस 50,000 ही रिपोर्ट किए जाते हैं। तो जितने भी सांप काटे वाले केसेस हैं, जरूरी नहीं हर सांप जहरीला हो, 80% सांप जहरीला नहीं होता। पर यदि किसी ने देख लिया है उसे सांप काट कर भागा है, तो वो भय के कारण ही अक्सर पेशेंट बेहोश हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये बताने की है कि भय के कारण हम दौड़ने लगते हैं, उछलने लगते हैं, सांप के पीछे भागने लगते हैं, सांप को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। यदि आपने देखा है कि आपके परिजन को या आपको सांप ने काटा है, तो आप बिना भय के शांत से रहिए। और भय से ये होता है कि आप जितना उछलेंगे मचलेंगे आपके शरीर में जहर जल्दी फैलता है, और जिस जगह काटा है वो हार्ट आपके दिल के नीचे स्तर पर होना चाहिए, ताकि वो सांप का जहर ऊपर ना फैले, क्योंकि जितना ज़्यादा शरीर में फैलेगा उतने ज़्यादा भयानक परिस्थिति हो जाएगी।
ये भी कहा जा सकता है कि आदमी जितना सांप के डसने से दिक्कत में आता है, उससे कहीं ज्यादा इसके बारे में सुनी सुनाई बातों के बारे में सोचकर परेशान हो जाता है।
गांव के लेवल पे सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए उनको, वो ज्यादा जरूरी है। एक तो अगर मान लीजिए खेत में सांप को काटा है, पैर में ही ज्यादातर काटेगा, तो आप दौड़ के मत जाइए घर में, है धीरे धीरे जाइए, या आपके साथ कोई है साइकिल पे बिठा के ले जाए, क्योंकि तो जितना आप दौड़ेंगे उतना ही ज़्यादा जहर जो है वो खून में चला जाएगा। हाथ में काटा है तभी भी ज़्यादा एक्टिविटी मत करिए, उसको आप स्टेबल रखिए जहाँ भी जिस पार्ट में भी काटा है। मान लीजिए सोते वक्त काट लिया है, और बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता है कि सोते वक्त काटा भी है, बहुत ही जैसे करेत वगैरह है, झाड़ फूँक वगैरह लोग पहले कराते थे, उसमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ही बहुमूल्य समय जो उसके ट्रीटमेंट में हो सकता है, लिया जा सकता है, वो ख़राब हो जाता है। और अगर किसी भी मरीज को आप देखें कि सांप ने काटा है और उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, या उसको बहुत नींद आ रही है, आंखें बंदी हुई जा रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है कि उसको जहर जो है बहुत ज़्यादा है, और उसको तुरंत आपको नियरेस्ट जो भी अस्पताल है जहाँ पर केयर हो पाए वहाँ पर ले जाना चाहिए।
ये भी जान ले कि फिल्मों के जरिए सांप से डसे गए हिस्से को चूसने या तेज धार चाकू से काटने जैसी जो बातें हम देखते सुनते हैं ना, वो सब गलत है। ऐसा करके आप सांप से डसे शख्स के साथ साथ अपनी जान भी आफत में डालेंगे, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है।
जब घर में सर्पदंश का मरीज होता है तो अक्सर ये किया जाता है कि उस जगह को या तो चूस कर जहर निकालने की कोशिश की जाती है, पर यदि सामने वाले मनुष्य का मुंह खटा फटा है तो वो जहर तो उसके ब्लड में भी जा सकता है। तो ऐसे में हमारे पास एक मरीज नहीं दो मरीज आएंगे, तो ये जरूरी है कि उस जहर को चूसने की कोशिश ना की जाए, उसमें कोई चाकू ना चलाया जाए, उसके ऊपर रस्सी बांध दिया जाता है उस पार्ट के ऊपर ताकि वो जहर ऊपर की तरफ ना फैले। पर ये टूनिकेट या रस्सी बांधना भी गलत है, उस जगह को बस हल्का पानी से धोकर उसके ऊपर हल्का कपड़ा बांध के उसे हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। तीसरी बात, लोगों में ये भी प्रचलन है कि उस पर फिटकरी लगाई जाती है ताकि जहर का असर कम हो जाए। फिटकरी भी नहीं लगाना चाहिए उस पर, ना कोई लेप लगाएं, ना उस पर हल्दी लगाएं, और सबसे ज़्यादा जो प्रचलन है बैगा के पास ले जाना, तो बैगा के पास ले जाने का जो समय है उसे बर्बाद ना करें।
और उसको कोई खाने पीने की चीज़ें मत दीजिए क्योंकि वो उल्टी कर सकता है रास्ते में। घर में कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, बस उसको कि आप जितनी सुविधा, आजकल तो सुविधा हो ही गई है 108 की, तो आप जल्दी से जल्दी उसको अस्पताल ले जाइए।
यदि वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं इसे बड़े हॉस्पिटल ले जाना चाहिए तो तुरंत से तुरंत बड़े हॉस्पिटल पहुँचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
लेकिन चूंकि हम जान नहीं सकते हैं कि जिस सांप ने काटा वो जहरीला था कि नहीं, इसलिए सांप के काटने पर जान बचाने के लिए एंटीवेनम इंजेक्शन जरूर लेने चाहिए।
कई बार सांप के काटे का निशान देख के समझ में तो आ जाता है, लेकिन कई बार इतना इनसिग्निफिकेंट होता है स्पेशली करेट में कि वो दिखाई भी नहीं पड़ता है, वहाँ पे कोई सूजन भी नहीं आती है। और कोबरा वगैरह जब काटते हैं तो वहाँ पे सूजन आती है और अच्छे से दिखाई भी पड़ता है, दो दांत होते हैं या एक वाइपर वैरायटी है वहाँ पर भी सूजन। लेकिन कुछ सांप ऐसे हैं वो जहरीले तो होते हैं लेकिन उनके काटने से कभी कभी निशान भी दिखाई नहीं पड़ता, बहुत ढूंढना पड़ता है, मरीज को भी नहीं पता रहता है।
लोगों में ये भी धारणा होती है कि अगर किसी सांप ने काटा है तो उसको दौड़कर पकड़ लो या उसको मार दो नहीं तो जहर ज्यादा फैलेगा, ये सब क्या सही है?
मैं तो मानूंगी कि ये पूरी तरह से अंधविश्वास ही है। सांप को मारने से पकड़ने से आप उसको और उकसा रहे हो, हो सकता है वो जाते जाते और दो तीन लोगों को काट दे। तो अच्छा है कि जिस सांप ने काट दिया आप एक नज़र उसको पहचान बस लो, क्योंकि हमारे भारत में मेनली तीन टाइप के सांप काटते हैं, एक तो कोबरा होता है, करैत होता है और तीसरा वाइपर बोलते हैं। तो जो कोबरा और करैत है वो मेनली हमारे नसों को अफेक्ट करते हैं जिसके कारण हमारा सांस जल्दी जाता है। सबसे पहले मरीज को सांस में असुविधा होगी, उसे धुंधला दिखेगा, उसकी पलक झपक जाएगी, और यदि बहुत ज़्यादा जहरीला हो तो उसके सांस में परेशानी आएगी, सांस फूलने लगेगा। ऐसी स्थिति में उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। यदि सांप बहुत ज़्यादा जहरीला है या फिर उसे ऊपरी हिस्से में काटा गया है जिससे जहर जल्दी मस्तिष्क और दिल में पहुँच गया है, तो ऐसे केसेस में कई बार मरीज बेहोश हो जाता है, उसे झटके भी आते हैं, तो तुरंत 108 एम्बुलेंस बुला के उससे नज़दीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वहाँ पहुँचाना चाहिए ताकि उसकी इमीडिएट उसे आईसीयू में भर्ती करके उसे वेंटिलेटरी सपोर्ट दिया जाए, मशीन में रखा जाए। क्योंकि सांप दंश वाले जो मरीज हमारे पास आते हैं यदि उन्हें टाइम से सांस की मशीन में रख दिया जाए तो दो दिन के भीतर ही उनकी सांस वापस आ जाती है, उनका अच्छा उपचार हो जाता है, उनकी पूरी देखभाल होती है और तीसरे दिन ही वो उठ के बैठ जाते हैं और फिर से काम करने लगते हैं। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी, जैसे घर के चार पांच पुरुष जमीन में सोए हुए हैं तो यदि सांप एक्टिव सांप आके पहला मनुष्य को जो काटता है तो पहले मरीज को उसने जितना जहर डाल दिया तो उसको सबसे ज़्यादा असर होगा, हो सकता है वो उसी समय कोमा में चले जाए या उसकी सांस बंद हो जाए, पर दूसरे तीसरे तक आते हुए उसके मुंह से जितना विष था वो कम हो चुका है तो तीसरे चौथे को उतना असर नहीं होगा, और बच्चा है तो ज़्यादा होगा, बूढ़ा है तो अत्यधिक होगा, और यदि पेशेंट को ऊपरी भाग में काटा है तो ज़्यादा विष का असर होगा। तो ऐसे समय जब भी आपको लगे कि पता नहीं मरीज रात में तो सोया था सुबह उठ नहीं रहा है या सुबह झटके के साथ उठता है या उसको पेट में बहुत जमकर दर्द होती है या उल्टियां शुरू हो जाती हैं, उसको दिखाई पड़ना बंद हो जाता है, पलक झपकी होती हो, तो ऐसे में उसे तुरंत से नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाए ताकि तुरंत इलाज शुरू होकर उस मरीज को बचाया जा सके। हमारे पास बहुत सारे गांव से भी डॉक्टर्स आते हैं जिनको हम मुंह से या नाक से सांस की नली में ट्यूब डालना सिखाते हैं। तो यदि इस चीज़ को उस डॉक्टर ने उसका सांस यदि बचा लिया, उसको अम्बू बैग के साथ, एक काले रंग का बैग होता है जिसको सांस की नली से कनेक्ट करके दबाते हुए यदि बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाए, तो जो प्राथमिक उपचार केंद्र है उनको भी सक्षम होना चाहिए कि वो तुरंत उसका प्राथमिक उपचार कर दे और ऐसे पेशेंट को जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचा सके।
और आइए अब जानते हैं सांप का जहर उतारने की दवा यानी एंटीवेनम के बारे में।
एंटीवेनम जो है वो सांप के जो जहर को मारने के लिए बनाया गया है और इसमें चार तरह के सांपों के जहर के लिए होता है। हमारे यहाँ पता नहीं रहता इसलिए चारों एक साथ मिले रहते हैं। और एक मरीज की कैसी कंडीशन है, अगर मान लीजिए मरीज में बिल्कुल सांस नहीं आ रही है और उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ रहा है, तो एक हम करीब 25 से 30 वायल एंटीवेनम यूज़ करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार आजकल सप्लाई कर रही है एंटीवेनम, सब जगह अवेलेबल है, PHCs में, CHCs में भी अवेलेबल है और अस्पतालों में भी अवेलेबल है। इसको लगाने से पहले इसकी सेंसिटिविटी का टेस्ट करते हैं और उसके बाद इसको ड्रिप में डाल करके पेशेंट की कितना उसमें जहर है उसको असेस करके उससे शुरू करते हैं। लाइफ सेविंग है, अगर आप GHC PHC में भी पेशेंट आया है तो अगर स्नेक बाइट डिसाइड हो गया है तो एंटीवेनम वहाँ पर भी सेंसिटिविटी करके शुरू कर देना चाहिए, उससे थोड़ा सा पेशेंट की जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाता है। स्कॉर्पियन बाइट जिसको बिच्छू डंक कहते हैं, ये सीजनल नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। और ज़्यादातर ये जो लोग ज़मीन में काम करते हैं, जो मैसन का काम करते हैं या बच्चे खेलते वगैरह रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, तो उस वक़्त ज़्यादा वो दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी होता है कि बच्चे खेल रहे हैं, कुछ ईंटा वीटा उठा लिया, उसके नीचे से छुपे रहते हैं, बिच्छू काट देते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल वेराइटी का बिच्छू है जो भूरे रंग का होता है, उसका स्टिंग जो है काफ़ी जहरीला होता है, सारे स्कॉर्पियन जहरीले नहीं होते हैं। और स्कॉर्पियन बाइट वाले मरीज को तो 100% अस्पताल भेजना ही चाहिए अगर जहरीला है। स्कॉर्पियन का पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है एज़ कम्पेयर टू स्नेक बाइट्स। और दूसरा जो है कि उसका इलाज करना भी एक मुश्किल का काम होता है, इसलिए उसको हमेशा स्कॉर्पियन बाइट वाले पेशेंट को बड़े अस्पताल में भेजना चाहिए जहाँ तक हो सके। मतलब उसके लंग्स में, उसके हार्ट में उसकी जो जहर होती है वो सारे उसके सिस्टम को अफेक्ट करती है। हालाँकि ये सब जितने भी बाइट्स हैं अगर समय पे पहुंच जाए तो मरीज को ठीक होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट भी देना पड़ता है, बहुत तरह के ड्रग्स भी देने पड़ते हैं और 2-3 से ज़्यादा दिन का टाइम भी लग सकता है।
ये तो हुई सांप के काटने की बात, लेकिन सबसे कॉमन है डॉग बाइट यानी कुत्ते का काटना।
कुत्ते तो घर गली में घूमते रहते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि उनसे बच नहीं पाते हैं लोग, बाग भौंकते हुए दौड़ रहे, किसी ने पत्थर मारा वो काटते हैं। तो कुत्ते के काटने के नाम से हमेशा से लोगों के मन में डर बैठा होता है कि उसके बाद 14 इंजेक्शन लगते हैं। कुत्तों से बचें वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब काट ही लिया तब क्या करना चाहिए? ऐसे समय तो सबसे पहले आप जहाँ पर काटा है वहाँ पर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग तो होती है, 2-4 खून की बूंदें दिखती हैं, तो उस एरिया को आप डिटॉल पानी से पहले थोड़ा सा धो लीजिए। और उसके बाद किस कुत्ते ने काटा है ये डिपेंड करता है, यदि घर का कुत्ता है उसे वैक्सीनेशन पूरी लगी हुई है तो फिर डर की बात नहीं है। अदरवाइज़ यदि मोहल्ले का कुत्ता है जिसे कोई इंजेक्शन नहीं लगे हों तो हॉस्पिटल तो आपको जाना ही पड़ेगा, आसपास के क्लिनिक जा सकते हैं। आपको टेटनस के इंजेक्शन के अलावा रेबीज के एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगाना होगा, और वो पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, आजकल तो 7 इंजेक्शन होते हैं, 0, 1, 3, 7, 14 और 1 मंथ, इस तरह से इंजेक्शन्स होते हैं। तो वो आपको पूरी ट्रीटमेंट लेनी होगी, आधे में ना छोड़े। और ये डिपेंड करता है कि आपको कितना, किस तरह का खरोच है या उसके छूने से आपके शरीर में खरोच से खून निकला है कि नहीं, किस तरह का कुत्ता है ये डिपेंड करता है। तो जब भी ऐसा हो उस पार्ट को बस आप धोकर एक क्लिनिक में ज़रूर जाइए और कहाँ किस कुत्ते ने काटा ये बात बताइए, फिर वो डिसाइड करेंगे आपको 3 इंजेक्शन लगने हैं कि 5 लगने हैं या पूरे लगने हैं। पर आप इंजेक्शन जितने बताए गए हैं ज़रूर लगवाइए, क्योंकि यदि वो जहरीला कुत्ता था, उसके जो रेबीज वायरस यदि आपके शरीर में प्रवेश कर गया है तो उसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, एक बीमारी का नाम है, जिसमें मरीज की हालत ऐसी हो जाती है कि वो पानी की तरफ देखना ही नहीं चाहता, पानी को देखते साथ ही वो पागल हो जाता है, और ऐसे मरीज को बचाना फिर बहुत कठिन हो जाता है। वो बहुत ही सीरियस बीमारी है। तो यदि आपको कुत्ते ने काटा है तो आप सावधानी पूर्वक पूरा कंसल्ट करिए और जितने इंजेक्शन लगवाने हैं लगवा लीजिए, और कोई डर की बात नहीं है।
अगर कुत्ता प्यार से भी चाटता है तो होशियार हो जाइए। अगर कुत्ते में रेबीज का इन्फेक्शन होगा तो आपके शरीर में रेबीज के वायरस जाने की आशंका बनी रहती है, खासकर अगर कुत्ते ने शरीर के उस हिस्से को चाट लिया हो जहां चोट की वजह से मामूली खरोच हो। अगर किसी कुत्ते के काटने के बाद स्किन पर उसके एक या दो दांतों के निशान दिखाई पड़ते हैं तो समझ लीजिए कि एहतियात बरतने की जरूरत है। ऐसे कई लोग हैं जो ये सोचकर कि कुत्ते को रेबीज न रहा होगा एक या दो दांतों के निशान को मामूली जख्म की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसी अनदेखी घातक साबित हो सकती है, क्योंकि रेबीज का वायरस एक बार आपके शरीर में जाकर बरसों सुप्तावस्था में रह सकता है, और कई बरस बाद जब ये अपना असर दिखाना शुरू करता है तो इलाज के लिए कुछ नहीं बचता।
घरेलू कुत्ते तो ज्यादातर लोग जो मतलब जो पालतू रखते हैं उनका वैक्सीनेशन कराते ही हैं, और उस वैक्सीनेशन को फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि वो हर साल लगता है, एक बार लगवाने से काम नहीं चलता है। हर साल उसका वैक्सीनेशन को और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना चाहिए। और घरेलू कुत्ता अगर आपका पूरा वैक्सीनेटेड है तो उसके लिए तो सिर्फ टेटनस टॉक्साइड लगवा लीजिए और उसको साबुन से धो दीजिए, उतना काफ़ी है। लेकिन अगर कोई जरूर सा भी डाउट है तो बेटर यही है कि आप पूरा ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि एक बार अगर रेबीज हो गई तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है, 100% मॉर्टेलिटी।
चूहा एक डरपोक जानवर है जो अमूमन सामने से नहीं काटता है, लेकिन सोते वक्त आपको काट सकता है या खाने पीने के सामान को कुतर कर इन्फेक्शन दे सकता है। चूहे के काटने से आपको उल्टी दस्त की समस्या से लेकर प्लेग जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। चूहे के जरिए ही प्लेग फैलता है, और प्लेग का कोई प्री वैक्सीनेशन या इलाज नहीं होता, और अगर ये हो गया तो इसे महामारी का रूप लेते देर नहीं लगती। बिच्छू के डंक को लेकर भी लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं रहती हैं। ओझा गुनी के चक्कर में पड़कर वे इसका नहीं दरअसल अपने वहम का इलाज करा रहे होते हैं।
बिच्छू का एक स्टिंग होता है, एक तो मार्क होगा, दूसरा दर्द बहुत सीवियर होती है। बिच्छू का दर्द इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट कितनी बार सिर्फ दर्द से ही करा सकता रहता है, और कोई भी नॉर्मल दर्द की दवा देने से उसका दर्द ठीक नहीं होता, तो उसकी दर्द से ही हम समझते हैं कि वो बिच्छू वाकई में बहुत जहरीला
है। हार्ट अटैक का दर्द होता है ना, जो हम सह नहीं पा रहे हैं, तो उस तरह का ये करा रहे हो, चीख रहे हो, वहाँ पर दर्द होता है। तो उस दर्द के लिए जो मॉर्फिन वगैरह भी लगाया जाता है, और कई बार एनेस्थेटिस्ट को बुला के ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, उस नर्व्स पे ब्लॉक लगती है, उसके कारण वो पूरा लिम्ब, वो पूरा हाथ ही पैलाइज कर दिया जाता है, तब जाके वो दर्द कम होता है। और बिच्छू डंक लंग्स पे अफेक्ट करता है, हार्ट पे अफेक्ट करता है, कई बार हार्ट फेलियर हो जाता है, मायोकार्डाइटिस होती है, कई बार ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि उसे स्ट्रोक हो सकता है, पेशेंट की जो मस्तिष्क की धमनियाँ या हार्ट की धमनियाँ फट सकती हैं, तो उसके लिए अलग दवाइयाँ चलती हैं। कई बार हार्ट फेलियर के कारण ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो होके मरीज की मृत्यु हो सकती है, कई बार सीने में पानी भर जाता है तो उसकी सांस नहीं चलती, मुंह से झाग निकलते हुए पेशेंट आता है, तो ऐसे पेशेंट को फिर आप सांस की नली में ट्यूब डालकर उसे वेंटिलेटर पर रखते हो और पूरी देखभाल करते हो, तब जाके ऐसे मरीज बच पाते हैं।
बिच्छू के लिए कोई एंटीवेनम नहीं है, खाली जिस सिस्टम को, हमारे जिस जिस ऑर्गन को उसने अफेक्ट किया है उसका हम इलाज करते हैं। जैसे हार्ट को अफेक्ट किया तो उसका इलाज करते हैं, लंग्स को अफेक्ट किया उसका इलाज करते हैं, और दवाएं देते हैं।
छिपकली के काटने को लेकर भी बहुत सारे वहम लोगों के जहन में होते हैं। सच्चाई ये है कि छिपकली के काटने से कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जहर उसकी ग्लैंड्स में नहीं, उसकी स्किन यानी त्वचा में होता है। कई लोग छिपकली के अपने ऊपर गिर जाने को भी तरह तरह से नुकसानदायक बताते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छिपकली की स्किन आपकी स्किन के संपर्क में आ जाने भर से नुकसान हो जाएगा। नुकसान तब हो सकता है जब छिपकली आपके खाने पीने के सामान में गिर जाए। दूध पानी या गर्म सब्जी में छिपकली के गिर जाने पर उसकी स्किन का जहर आसानी से इन चीजों में घुल जाता है। ततैया, मधुमक्खी, लाल चींटी या बरसात में निकलने वाले कीड़े, इनके काटने से क्या होता है, आइए जानते हैं विशेषज्ञों से।
जहाँ भी कीड़े ने काटा है तो वो एरिया लाल हो जाता है, हो सकता है वो थोड़ा दर्द कर रहा हो, तो ऐसी जगह पे अक्सर या तो वो वहाँ तक ही सीमित रहेगा, तो उसके ऊपर या तो आप कुछ क्रीम लगा लो। और दूसरा ये होता है कि उस कीड़े से एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण आपके शरीर में उस जगह चित्ते चित्ते पड़ जाएंगे, आपको हो सकता है मुंह वगैरह सूज जाए, गला यदि सूज जाता है धीरे से आपको सांस में तकलीफ हो सकती है। तो यदि उस एरिया तक सीमित है तो ठीक है, पर यदि आपको लगता है कि वो एलर्जी आपके शरीर में फैल रही है, चित्ते चित्ते बढ़ रहे हैं और सांस में तकलीफ हो रही है, तो तुरंत हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस को ICU में एडमिट करके उसे एड्रेनलिन देते हैं और एनाफाइलेक्टिक शॉक मैनेज करते हैं, तभी मरीज बच पाता है। जिस तरह मधुमक्खी का डंक होता है, वो तुरंत ही इतना एलर्जी फैल जाती है कि उसे तुरंत हॉस्पिटल लाना ही होता है, वैसे ही कुछ कीड़ों को काटने से मरीज में उस तरह की एलर्जी फैल जाती है, पर ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं।
ऐसे वाले कीड़े कुछ खास तरह के दिखते हैं या देख करके जैसे सामने चल रहा है तो पहचान में भी नहीं आते हैं, तो कुछ ऐसे हैं क्या कीड़े जिनको देख करके पहचाना जा सके कि ये जहरीले हैं?
ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मधुमक्खियाँ काफ़ी ऐसी होती हैं जो कि जहरीले होते हैं, और कोई भी कीड़ा अगर काट रहा है और आपको लोकल मतलब वहाँ जगह की बड़ा और परेशानी हो रही, तो इसका मतलब ही वो जहरीला है।
हम लोग बचपन में सुनते थे वो एक बूंदा छह बूंदा कीड़ा, काले रंग का कीड़ा होता है, उसके ऊपर पीले डॉट्स रहते हैं, तो वो बहुत जहरीले होते हैं जितने ज़्यादा बिंदी वाला कीड़ा रहता है, तो वो कभी कभी दिखाई पड़ जाते हैं, तो वो सचमुच जहरीले होते हैं क्या?
अब वो हम लोग तो ज़्यादातर जहरीला है कि नहीं ये पेशेंट की सिम्टम्स से ही पहचानते हैं, कीड़ा तो देखने में नहीं मिलता है, लेकिन जिसमें पेशेंट में जनरलाइज सिम्टम्स है, सांस की परेशानी है, गले में सूजन आ गई है, गले में अगर कीड़े ने काटा है और सूजन आ गई तो उसकी वजह से भी सांस में परेशानी हो जाती है, ये ब्लड प्रेशर फॉल हो सकता है, तो अगर किसी को जनरलाइज सिम्टम्स हो रही हैं तो इसका मतलब वो कीड़ा जहरीला था ही था, तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, लेकिन डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करिए।
अमरकंटक के जंगल और मरवाही क्षेत्र, बहुत सारे भालू और बंदर इस इलाके में पाए जाते हैं और इनके काटे हुए रोगी बिलासपुर के अस्पतालों में भारी संख्या में पहुंचते हैं। इसके बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर एस चैटर्जी और डॉक्टर मधुमिता मूर्ति।
इस इलाके में भालू के काटने के भी बहुत सारे मरीज आते हैं, जब वो आते हैं तो उन्हें देखकर ही बड़ा दुख होता है, क्योंकि जंगल में अक्सर जो लकड़ी काटने जाते हैं या फिर कुछ पौधे या बीज चुनने के लिए जाते हैं गांव वाले, तो जब भालू उन पे अटैक करता है तो भालू की एक प्रवृत्ति होती है कि उसे जो चीज़ सामने दिखता होता है उसे वो नोचने की कोशिश करता है। ऐसे सबसे पहले आदमी का चेहरा दिखता है तो उसको आँखें और नाक बड़ा पसंद आता है, तो वो अपने पंजों से कई बार हमारे पास मरीज आए हैं जिनकी आँख ही उसने बाहर निकाल दी हो, नाक नोच दिया हो और पूरे चेहरे का मांस ही छिल गया हो, मांस सिर और चेहरे का मांस अलग हो गया हो, तो ऐसे मरीज जब हमारे पास आते हैं तो बहुत ही बुरी हालत में होते हैं और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लाकर टेटनस का इंजेक्शन लगता है, एंटीबायोटिक्स लगती हैं और पूरा चेहरा सिला जाता है। अक्सर उन्हें आँख अपनी खोनी पड़ती है, क्योंकि आग एक बार बाहर सॉकेट से निकल गया तो उसे वापस नहीं डाला जा सकता, नाक पूरी तरह से टूटा हुआ रहता है, चेहरा तो देखने लायक नहीं रहता उस समय, पर धीरे धीरे मरीज ठीक होता है।
बियर बाइट, कैट बाइट, डॉग बाइट सब में एंटी रेबीज लगता है, नॉट ओनली कि खाली डॉग बाइट में ही लगता है, इवन अगर आपको बिल्ली ने भी मार काट दिया है या बियर ने भी काटा है, सब में एंटी रेबीज लगता है। हाँ, बंदर में भी लग सकते हैं, बंदर भी लग, नहीं उतने नहीं आते हैं, बियर के ज़्यादा आते हैं। ये बियर जो होता है, बच्चे जब शौच के लिए जाते हैं जंगल में, स्पेशली ये अमरकंटक एरिया में, तो उस वक्त वो बच्चे को देख करके उसके ऊपर झपट पड़ता है और ज़्यादातर फेस पे ही काटता है। जैसे
तो श्रोताओं, जानवरों और कीड़ों के काटने की कुछ बातें, उनसे होने वाले नुकसान, उनसे बचने के तरीके और उपचार के बारे में आज हमने जानकारी दी आपको, और ये जानकारी उपलब्ध करवाई डॉक्टर एस चैटर्जी और डॉक्टर मधुमिता मूर्ति ने। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और श्रोताओं से उम्मीद करते हैं बरसाती कीड़े मकोड़ों और सांप बिच्छू आदि से बचकर रहें, सावधानी बरतें। और साथ ही जाते हैं आप लोगों से इजाजत आज का कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार।
अर्पा रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आरोग्य वाणी। आज का विषय था सर्प दंश और एनिमल बाइट। विशेषज्ञ थे डॉक्टर मधुमिता मूर्ति व डॉक्टर एस चटर्जी। प्रस्तुति थी संज्ञा टंडन की।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।